बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 25 जून, दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला कर चुका है। फैसला जनमत संग्रह के जरिए हुआ। ब्रिटेन के साथ रहने के मुद्दे पर स्कॉटलैंड में भी जनमत संग्रह हुआ था और जिसका परिणाम ब्रिटेन के पक्ष में गया था। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना चाहते हैं और इसके लिए जनमत संग्रह कराना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या जनमत संग्रह के जरिए भारत की राजनीति के पेचीदा अनसुलझे सवाल सुलझाए जा सकते हैं? अपनी राय रखें, मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी, लेकिन थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। यूरोपीय संघ के 6 संस्थापक सदस्य ब्रिटेन पर संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दबाव बना रहे हैं। कल आए जनमत संग्रह के नतीजों में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर रहने के लिए मतदान किया था। जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर ने 5 सदस्यों से मुलाकात के बाद बर्लिन में ब्रिटेन से जल्द ये प्रक्रिया शुरू करने को कहा। उनका कहना था कि वे ब्रिटेन के अपने मामलों को खुद देखने वाले फैसले का आदर करते हैं, साथ ही उनकी जिम्मेदारी संघ का भविष्य देखना भी है। लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री का कहना था कि अब बिल्ली और चूहे का खेल नहीं खेला जाना चाहिए। लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जियां एसलबॉर्न का कहना था, मैं ये उम्मीद करता हूं कि बिल्ली और चूहे का खेल हम नहीं खेलेंगे, ना ही वो ग्रेट ब्रिटेन के लिए ठीक है और ना ही यूरोपीय संघ के लिए। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। ब्रिटेन के लोग जो चाहते हैं वो उन्होंने किया और हमें इस फैसले को मानना होगा। ये थे लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जियां एसलबॉर्न के शब्द। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जर्मी कॉर्बिन का कहना है कि अगर नेतृत्व के लिए चुनाव होते हैं तो वो दोबारा चुनाव में खड़े होंगे। उनके विरोध में 2 सांसदों के अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद उन्होंने ये बात कही। इसमें कहा गया कि उन्होंने ईयू में रहने के लिए ठीक से प्रचार नहीं किया था। कॉर्बिन का कहना था कि जनमत संग्रह बताता है कि ब्रिटेन विभाजित है। ब्रिटेन में यूरोपीय कमिश्नर जोनाथन हिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के ईयू से अलग होने के बाद वित्तीय सेवाओं के लिए अब पद पर बने रहना सही नहीं है। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन का कहना है कि अब दूसरा स्वतंत्र जनमत संग्रह कराने के लिए एक विधेयक लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने के फैसले से होने वाले असर पर चर्चा के लिए हुई कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने ये बात कही। इस जनमत संग्रह में स्कॉटलैंड ने ईयू में रहने के पक्ष में वोट डाला था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए चरमपंथी हमले में सीआरपीएफ के 8 जवानों की मौत हो गई है और 28 अन्य घायल हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने हमले में मारे गए जवानों के लिए दुख व्यक्त किया है। ये घटना पंपोर के फेरसपल में हुई, जहां सीआरपीएफ के जवानों को लेकर बस दक्षिण कश्मीर की ओर जा रही थी। सीआरपीएफ के आईजी नलन प्रभात ने इसे आत्मघाती हमला बताया और साथ ही कहा कि इस हमले के लिए लश्कर ए तैयबा जिम्मेदार है। अमेरिका के राज्य पश्चिमी वर्जीनिया में बाढ़ की वजह से अब तक 20 लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। गवर्नर अर्ल रे टॉल्बिन ने आपातकाल की घोषणा की और ये भी कहा कि ये बड़ी आपदा है। उन्होंने बाढ़ से बड़े नुकसान की आशंका व्यक्त की है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल।
बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और कार्यक्रम का विषय आप जान चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने ट्रांजिस्टर को अभी खोला है उन्हें मैं विषय बता दूं कि यूरोपीय संघ का जनमत संग्रह हो चुका है, ब्रिटेन बाहर जाने का फैसला लोग सुना चुके हैं। सवाल ये है कि क्या जनमत संग्रह के जरिए पेचीदा सवाल सुलझाए जा सकते हैं? मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामने वरिष्ठ पत्रकार जनसत्ता के पूर्व संपादक ओम थानवी, साथ ही फोन लाइन पर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष। सबसे पहले ओम थानवी साहब, एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे चाहता हूं कि जनमत संग्रह से क्या जटिल पेचीदा मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं? अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पूर्ण राज्य का मुद्दा जो सुलझेगा जनमत संग्रह से सुलझेगा।
देखिए, लोकतंत्र में हम जो चुनाव करते हैं, वो चुनाव भी क्या होता है, चुनाव भी एक तरह का जनमत संग्रह ही होता है। उसमें कुछ मुद्दों को लेकर के एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर के आती है और लोगों की राय जानी जाती है। लेकिन बहुत संवेदनशील मुद्दों को लेकर, बहुत जटिल मुद्दों को लेकर के सिर्फ एक बार भी आप लोगों के बीच चले जाएं और उस गिनती के आधार पर आप मान लें कि लोग किस तरफ हैं, मैं मानता हूं कि ये हमेशा कोई बहुत सही चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि कई बार लोग एक दौर में भावुकता के घेरे में होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो भावुकता से लोग अलग होते हैं। जैसे कि राम मंदिर के मामले में लोग साथ में थे एक पार्टी के, लेकिन आज अगर आप उनको पूछें तो उस पार्टी के साथ में उस मुद्दे पर शायद न हों। तो ये जो भावुकता का पुट है, भावावेश का पुट है, ये मेरे ख्याल में कई बार गलत नतीजे भी लेके आ सकता है। इसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन वो एक बार का जनमत संग्रह और एक जो चुनाव में जैसा होता है कि थोड़ी गिनती में 50 की जगह अगर आपको 49 और 51 का फर्क पड़ गया, उस तरह उसको जनमत संग्रह का आदर्श नहीं माना जाना चाहिए। वो किस्तों में हो और उसमें इतना समुचित फासला होना चाहिए कि आप कह सकें कि हाँ, बड़ा जन समुदाय जो है वो एक चीज के हक में है। तो प्रक्रिया थोड़ी अलग होनी चाहिए।
यूरोपीय संघ के मामले में भी यही हुआ है कि वहां पर कई लोग दूसरी बार जनमत संग्रह कराने की मांग कर रहे हैं, एक ऑनलाइन याचिका शुरू हुई है, लाखों लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं और कई लोग इस फैसले को बचा नहीं पा रहे कि अरे ये क्या हो गया। आशुतोष को शामिल कर रहा हूं। आशुतोष, आपकी जो पार्टी है दिल्ली में जनमत संग्रह कराना चाहती है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, क्या एकमात्र विकल्प जनमत संग्रह ही बचा हुआ है?
देखिए, इस पूरे मसले को समझने के लिए हमें पहले तो यह समझना पड़ेगा कि देश की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां थी जिन्होंने कांग्रेस, जिन्होंने दिल्ली के ऊपर शासन किया, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने जो मैनिफेस्टो थे वो पिछले 20 साल से लगातार ये दोहरा रहे थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।
बिल्कुल ठीक।
आम आदमी पार्टी ने भी ये कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और हमको 70 में से 67 सीटें मिली, उसके बाद अगर आप देखें तो बीजेपी के सुर पूरी तरीके से बदले हुए हैं। बीजेपी वो पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हर्षवर्धन ने 2014 के चुनाव के दौरान ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनने के एक महीने के अंदर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाऊंगा और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाऊंगा।
बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अब सवाल ये कि आज बीजेपी के सुर पूरी तरीके से बदले हुए हैं।
मेरा सवाल
एक राजनीतिक स्तर के ऊपर आम आदमी पार्टी का मानना ये है कि ऐसे में जब राजनीतिक लाभ द्वेष की भावना से अगर मुद्दे तय होते हैं, वैसे में जनता के बीच में जाने में किसी तरीके से कोई बुराई नहीं है। जनता ही ये लोकतंत्र के अंदर तय करती है कि किसकी सरकार होनी चाहिए, किसकी सरकार नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा
अपने तरीके की एक रायशुमारी
ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये बताइए कि जनमत संग्रह में जनता जो अपने उद्गार व्यक्त करती है, अगर मान लीजिए कि आपके पक्ष में बात आती है, तो इसे लागू कैसे करेंगे? क्योंकि जनमत संग्रह का कोई प्रावधान तो है नहीं, तो फिर इसे लागू कैसे करेंगे?
नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि लोकतंत्र के अंदर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, हर व्यक्ति को जनता की बात को मानना चाहिए, क्योंकि अंततः हर व्यक्ति को जनता के सामने नतमस्तक होना चाहिए। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर दिल्ली की जनता ये कहती है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो देश की संसद को भी उसका सम्मान करना चाहिए। फिर देश की संसद ये नहीं कह सकती कि हम दिल्ली वालों के विचार के खिलाफ कोई और काम करेंगे।
मैं आपको आशुतोष, मैं आपको टोक रहा हूं। हमारे एक श्रोता है नवल जोशी, एक इन्होंने टिप्पणी की है फेसबुक पर, बड़ी रोचक टिप्पणी है और इससे आपका सवाल बनेगा। यदि इसी तरह हर मामले में फौज अपने जवानों की राय इकट्ठा करके रणनीति बनाती रहे तो फौज ने चौपाल हो जाएगी। मंगल ग्रह पर यान भेजने का सवाल और सारे वैज्ञानिक मिलकर लॉबिंग कर लें और बहुमत से जो हो तय करें, तो ऐसे में न फौज बचेगी और न ही विज्ञान बचेगा। ऐसे ही सब चीजें अगर जनता तय कर देगी तो चीज कहां बची?
नहीं, मुझे लगता है कि ये विचार अपने आप में ही जन विरोधी विचार है, लोकतंत्र विरोधी विचार है। इसी लोकतंत्र की वजह से एक जमाने में हिटलर भी जर्मनी के अंदर पैदा हुआ था। तो क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म?
तो लोकतंत्र है, यहाँ पर चुनाव तो हो ही रहे हैं ना, तो चुनाव में और चुनाव और फिर लोकतंत्र का जरिया चुनाव है, ना कि जनमत संग्रह।
हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर राजनीतिक पार्टियां अपने वायदे पे खरी नहीं उतरती हैं, झूठे वायदे करती हैं, तो जनता के बीच में जाके जनता की राय लेने में बुराई क्या? मैं तो ये बात कहता हूँ,
लागू कैसे करेंगे? सवाल ये है कि अगर मान लीजिए पक्ष में आ भी गया तो लागू कैसे करेंगे?
मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर दिल्ली की जनता कहती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए तो देश की संसद को उसका सम्मान करना चाहिए। अगर देश की संसद उसका सम्मान नहीं करती है तो फिर एक सवाल खड़ा होगा इस देश के अंदर कि भाई क्या जनता की राय को माना जाए या ना माना जाए।
आप जनता की बात कर रहे हैं, आप जनता की बात कर, मैं आपको रोक रहा हूं, एक श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर रहा हूं। जी नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं आप?
हेलो
जी, हां नाम बताइए, कहां से बोल रहे हैं?
सर मैं बिहार के सीतामढ़ी जिला के सतमचा गांव से बोल रहा हूँ। सर संजय कुमार बोल रहा हूँ।
हाँ नाम क्या था?
संजय कुमार बोल
रहा हूँ। संजय कुमार जी बताइए।
हाँ सर, जो है ना नया चीज तो करना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि वो गलत हो। जैसे बोल रहे हैं कि जन्म संग्रह के बारे में बोल रहे हैं जो, वो तो नया चीज है, बट सर ऐसा ना हो कि गलत होना चाहिए, क्योंकि तो हमारे जो लॉ में ऐसे है, कानून में क्या है ना कि जो एक इलेक्शन को करते हैं फिर उसके बाद ये जन्म संग्रह कौन सा बात आ जाता है सर? ये अदर क्योंकि हमारा जो इंडियन डेमोक्रेसी है सर, अदर यहाँ से दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि यूरोप में हुआ, रूस में ये हुआ जन्म संघर्ष, क्योंकि हमारा इंडिया तो अलग है ना सर, इससे हम कैसे इसको सर्टिफाइड कर सकते, इसको एक्सेप्ट कर सकते।
बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार। आशुतोष जी, इनका इनसे जो कह रहे थे आपने सुन लिया कि भाई लंदन यूरोप इन सब की बात अलग है, हिंदुस्तान तो भाई दूसरी चीज़ है ना, कैसे कैसे वो चीज़ें लागू कर देंगे?
फिर मैं दोहराऊंगा अपने आप को कि इस दुनिया के अंदर जब 1900 इस देश ने जब स्वीकार किया आजादी के बाद कि हमें लोकतंत्र होना चाहिए, तो दुनिया के बहुत सारे विद्वानों ने यह कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र ना तो कामयाब होगा और ना ही हिंदुस्तान एक नेशन स्टेट के तौर पर कभी एक रह पाएगा। विंस्टन चर्चिल का बड़ा फेमस बयान है इस तरीके के, बहुत सारे लोगों ने कहा। मैं कहता हूं कि देश के अंदर अगर लोकतंत्र हमने स्वीकार किया है तो लोगों की राय जानने में बुराई क्या है और उस राय के मुताबिक काम करने में क्या तकलीफ है?
नहीं नहीं, बुराई कुछ नहीं है। बात ओम थानवी साहब भी यही बात दोहरा रहे थे कि जो भावुकता के क्षणों में एक फैसला जो लिया जाता है उसको जनता बाद में बदल देती है, अगले साल दूसरी सरकार आ जाती है, इस बार आप बहुमत से जीत के आए, अगली बार चुनाव होगा तो हो सकता है पत्ता साफ हो जाए, जनता की बात है ना ओम थानवी साहब।
दूसरा उसमें एक बात और भी आशुतोष जी की, मान लीजिए जनमत संग्रह हो जाए, एक बार तो मेरा मानना है कि जनमत संग्रह हो गया और बगैर जनमत संग्रह के ही तमाम पार्टियों ने आगे बढ़ चढ़ के ये कहा कि नहीं हम इस दिल्ली को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, तो जनमत संग्रह की जरूरत भी नहीं बची। और फिर जनमत संग्रह इस मायने में कि आपने भी कहा और आपको 70 में से 67 सीटें मिल गई, सारी दिल्ली आपके साथ है, पर जिस तरह से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ सलूक कर रही है तो अगर आप जनमत संग्रह करवा भी लें तो उससे क्या फायदा होगा? वो आपको आपके समझते हैं कि उस जनता की भावना की कद्र करेंगे? करते तो जिस पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली, अगर उनके साथ ये सलूक है तो आपको 100 में से 100 जनमत संग्रह में मत मिल जाएं तब भी वो उसका सम्मान करेंगे, इस पे आपको भरोसा है? हमको तो नहीं है।
नहीं, बट लोकतंत्र के अंदर ये बात तो स्पष्ट होनी चाहिए कि कौन जनता के मत का सम्मान कर रहा, कौन जनता के मत का सम्मान नहीं कर रहा, तब तो ये बात स्पष्ट होगी ना।
सारा देश देख रहा है
कौन लोग है और लोकतंत्र के खिलाफ कौन लोग है। अगर हमने ये एक्सेप्ट किया है, अगर भारत ने इस तथ्य को माना है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, वी द पीपल की बात अगर हम करते हैं, तो फिर दिल्ली की जनता जो कहे उसको मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य हो, क्यों ना माने उसको।
मैं थोड़ा सा विषय का विस्तार करता हूँ, एक श्रोता को लेता हूँ, थोड़ा सा विषय का विस्तार करता हूँ। आशुतोष कहीं जाइएगा मत, ओम थानवी साहब तुरंत लौट रहा हूँ। जी श्रोता है, कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूँ, मोहम्मद शफी जागल बोल रहा हूँ, तहसील
मोहम्मद शफी साहब जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय रखें आप।
सबसे पहले मैं सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप हम मिडिल लोगों को आप एक मौका देते हैं। सबसे पहली मेरी बात यह है कि अगर देश का कानून हमारा ये कहता है कि दिल्ली को जनमत संग्रह करने की इजाजत देता है तो ठीक है। उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ केजरीवाल को भी जनमत सराह कराना उसको मौका देना चाहिए जनमत सराह कराने का, क्योंकि जबकि देश की बाकी स्टेटें जो है उनके अंडर सब जो है वो आ जाती है, पुलिस उनके अंडर आ जाती है और चीफ मिनिस्टर जो होता है सब कानून सो उसको स्टेट को चलाता है, तो दिल्ली को अगर एक चीफ मिनिस्टर भी बनता है तो उसको एक पुलिस जो है एक सिपाही नहीं मानता चीफ मिनिस्टर को, तो वो बेचारा क्या गरीब चलाएगा, वो उस पब्लिक की क्या सेवा कर सकता है, इस दौर में क्या सेवा करेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर केजरीवाल जी ये जनमत सराह कराना की चाहते हैं, कानून के अंदर रह कर कानून कराना चाहते हैं, तो इनको कराने दे चाहिए। और केजरीवाल जो है देश के सबसे बड़े नेता है, इनकी तुलना में नेहरू जी और अटल बिहारी वाजपेयी से करना चाहता हूँ, कि ये सच्चे लीडर हैं, जो इन्होंने बात इलेक्शन में की 100 इन्होंने उतारी, बाकी जो लीडर हैं वो जो बात करते हैं वो पूरी नहीं उतरती।
अपने वादे पर, अपने वादे पर पूरा पूरा खरा नहीं उतरते।
ये वजीर आजम भी तक ये चले जाए तो हम इसका शुक्र अदा करते हैं खुदा का।
जी मोहम्मद शफी साहब, आशुतोष जी, इन्होंने केजरीवाल साहब की तुलना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से की, ये तुलना आपको मंजूर है?
नहीं देखिए, हम लोग तो ये सब तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं और हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग दरअसल बहुत छोटे लोग हैं, आम आदमी जैसे लोग हैं और आम आदमी की ही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग कभी राजनीति में इसलिए नहीं आए क्योंकि हमको राजनीति करनी है।
मैं विषय का विस्तार कर रहा हूँ, मैं अब इस विषय का विस्तार कर रहा हूँ आशुतोष।
हम लोग इतनी सी बात कहते हैं कि भाई जो जो जिस तरीके से देश को चलना चाहिए, जिस तरीके से कानून का शासन होना चाहिए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, वैसा ही अगर चलता होता तो हम लोगों को राजनीति माने की कोई जरूरत नहीं।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं इस थोड़ा सा विषय का विस्तार कर रहा हूँ ओम थानवी साहब। एजेंडा ये है कि जनमत संग्रह के जरिए, क्या ये तो चलिए दिल्ली की बात होगी, ये तो छोटी सी बात है, क्या जटिल मुद्दों को सुलझाया जा सकता है? जटिल मुद्दे यानी कि हम धारा 370 की बात कर सकते हैं, जटिल मुद्दा जो समान नागरिक संहिता की बात कर सकते हैं, और ये सारे मुद्दे हमारी विपक्षी पार्टी जिनके कभी एजेंडे में हुआ करते थे उनके 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 मुद्दे हैं ये।
नहीं, मुझको मुश्किल लगता है, मैंने पहले भी कहा कि इस तरह की जो रायशुमारी है उसमें भावावेश जो है वो काम करता है। जैसे मैं उदाहरण दूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव जब तब खड़े होते रहते हैं, और अगर आप अंग्रेजी चैनलों को देखते हों तो उसके हिसाब से तो लगता है कि कल
रोज युद्ध हो जाए,
कल लड़ाई जो है हो सकती है। और अगर ऐसा उन्माद कुछ चैनल खड़ा कर दें और उसके बाद आप रायशुमारी करें कि क्यों भारत और पाकिस्तान को क्या आपस में युद्ध करना चाहिए, तो आपको भारत में भी 100 में से 90 लोग कहते मिल जाएंगे या 80 कहते मिल जाएंगे और पाकिस्तान में भी मिलेंगे। लेकिन पलट के अगर कभी आप अच्छे दिनों में अगर आप ये कहें कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती के कदम बढ़ने चाहिए, तो आपको उसमें भी 100 में से 80 लोग मिल जाएंगे।
बिल्कुल।
तो मेरा कहना ये है कि किस तरह से कैसे माहौल में क्या चीज़ रखी जाती है, रायशुमारी का उस पर असर होता है। पर लोकतंत्र में चूंकि चुनाव हम लोग नियमित करते हैं और चुन के एक सरकार आती है, उस सरकार के एजेंडे में एक चीज़ है, यहाँ तो तीनों पार्टियों के एजेंडे में एक चीज़ थी,
तब भी
अगर उसका तो जनमत का अपमान तो हो गया और वो जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि आपकी पसंद की सरकार जो है वो वहाँ पे नहीं है। हालांकि आशुतोष जी को खुश होना चाहिए कि कश्मीर में भी उनकी वाहवाही हो रही है, तो मुझे लगता है कि पंजाब,
शफी साहब कह रहे हैं,
गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद वो श्रीनगर न पहुँच जाए।
आशुतोष जी, जी हमारा हमने जो बड़ा सवाल उठाया कि जटिल मुद्दों पर आपकी क्या राय है, जटिल मुद्दे भी क्या इसी तरह सुलझेंगे हिंदुस्तान में?
देखिए मैं एक बात में माफ करिएगा, मैं ओम थानवी जी के इस राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि भावना की भावावेश में बहुत सारे फैसले हो जाते हैं और जनता के अगर भावुक हो जाए तो कुछ उल्टे फैसले भी हो सकते हैं। देखिए ये अपने आप में अभिजात्य या इलिटिस्ट नजरिया हो सकता है। लोकतंत्र के अपने फायदे भी है, लोकतंत्र के अपने नुकसान भी है। जहां तक रायशुमारी की बात है, रेफरेंडम की बात है, तो रेफरेंडम हर मसले पे नहीं होता है। रेफरेंडम बहुत रेयरेस्ट द रेयर मसले पर, जब ये लगे कि वाकई में जो जो जो, जो पॉलिटिकल क्लास है वो शायद जनता के खिलाफ पूरी तरीके से जा रहा है, या फिर ये लगे कि इस पूरे मसले पर बहुत जटिल मामला पैदा हो।
इसीलिए मैं वही उन्हीं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, उन्हीं मुद्दों की बात कर रहा हूँ जो जटिल से, जैसे कानून के लिए कहते हैं ना कि दुर्लभतम मामले, तो जटिलतम मामलों में क्या होगा?
नहीं, हमारे ख्याल से जटिलतम मामलों में ये फैसला हो सकता है कि क्या इसमें रेफरेंडम कराया जाना चाहिए या नहीं कराया जाना चाहिए। हर एग्जीक्यूटिव, और जैसे बहुत सारे मसले हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से समझ सकते हैं, बहुत सारे मसले हैं जो पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट के माध्यम से समझ सकते हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जो कुछ दूसरे तरीके से निकल सकते हैं, लेकिन कुछ अगर ऐसे मामले हैं जिसमें लगता है कि जनता की राय वाकई ली जानी चाहिए तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में लेने में कोई बुराई नहीं है।
जी ओम थानवी जी, ओम थानवी जी कुछ कह रहे हैं, ओम थानवी जी माफ कीजिएगा, आशुतोष कुछ कह रहे हैं।
एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा 10 सेकंड के अंदर कि 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया, उस वक्त बड़ा जबरदस्त उन्माद था, बीजेपी की 4 सरकारें बर्खास्त हो गई, चुनाव हुआ, 3 सरकारें सरकार में नहीं आई। तो ये तो लोगों का विवेक है ना, तब लोग ये कह सकते थे कि अगर उस वक्त बड़ा बहुत दिक्कत पैदा हो सकती थी, बीजेपी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी थी चारों राज्यों में आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
ओम थानवी साहब कुछ कह रहे थे?
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने शुरू में ये कहा कि जो हम लोग लोकतंत्र में चुनाव करते हैं उन चुनाव में ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर के आते हैं लेकिन आशुतोष जी का ये कहना ठीक है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत रेयर से रेयर जो उन्होंने कहा चीज़ें हैं, पर रेयर से रेयर बाबरी का जिक्र उन्होंने किया, उससे ज़्यादा रेयर क्या
समान नागरिक संहिता धारा 370 कई मामले हैं
तो हाँ। उनमें अब आप ये देखिए कि इस देश में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है और उसी की वजह से राम मंदिर का जब मामला चला तो एक दौर में तो लोगों को आपने इतना भड़का दिया कि हर व्यक्ति ईंट लेकर के चल दिया और लगा कि हर व्यक्ति जो है अयोध्या की तरफ जा रहा है। मैं कह रहा हूँ समय की बात चीज़ें होती हैं, उस दौर में अगर आप देखें और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त समर्थन मिला, बाद में उन मुद्दों पे उनको लगता है कि अब नहीं मिलेगा तो उन्होंने दूसरे नए मुद्दे खड़े कर रखे हैं। अगर वो जनमत संग्रह के नाम पे कभी मान लीजिए एक परिवेश को देख के, चाहे पाकिस्तान का मामला हो चाहे राम मंदिर का मामला हो, वो चले जाएं और उसमें वो इस देश में जो है वो तूफान खड़ा करवा सकते हैं, भारत पाकिस्तान की लड़ाई करवा सकते हैं। इसलिए हमेशा जो है वो, मैं इसलिए इसको चाहे एलीट कहिए या कुछ भी कहिए, जनमत संग्रह एक बार की चीज़ नहीं है। आपको लोगों का मन जानने के लिए,
मूड भांपने के लिए,
ये जो चीज़ हमेशा कारगर हो मैं ये नहीं मानता हूँ और ये यूरोप में हम लोग देख रहे हैं।
एक श्रोता को शामिल करूंगा, माफ कीजिएगा, श्रोताओं का कार्यक्रम है। जी नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं?
हेलो
जी, नाम बताएं बंधु।
सूबेदार अली देवरिया उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूं।
रखें अपनी बात।
हमारा संविधान इंग्लैंड के संविधान के आधार पर बना हुआ है। इंग्लैंड में किसी जटिल मसले को लेकर के अगर जनमत संग्रह कराया जा सकता है तो भारत में क्यों नहीं कराया जा सकता?
जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता के पास चलते हैं, उनकी राय भी सुन लेते हैं। जी नाम बताएं बंधु, कहां से बोल रहे हैं?
हेलो
जी, हाँ नाम बताएं।
जी सर, रामजीत यादव, गोकुलपट्टी भदोही उत्तर प्रदेश से बोल रहे
हैं। रामजी यादव?
रामजीत यादव।
अच्छा रामजीत यादव, बताएं।
हाँ सर, ये जन्म संग्रह से सभी मामले हल नहीं हो सकते। इनमें जो है सबकी लोगों की भावुकता होती है, उनके पर्सनल विचार तो क्षणिक मात्र के लिए होते हैं, उनका ये भविष्य के लिए नहीं होता।
तो मतलब जो भावनाओं में बह के बात कही जाती है, रामजी यादव ये कह रहे थे, आशुतोष बात ये भी वही कह रहे हैं कि अगर भावनाओं में आपने ठप्पे लगाने शुरू कर दिए हाँ नहीं तो उससे बात नहीं बनेगी।
नहीं देखिए ये
और कल वो बदल जाएंगे क्योंकि ये मुझे लगता है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत पर है।
मेरा ये मानना है कि जैसे अगर आप ब्रिटेन का उदाहरण लीजिए,
वहाँ भी लोग पछता रहे हैं कुछ लोग।
नहीं देखिए ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर जो लोग ये कह रहे थे कि हमको यूरोपीय संघ के साथ होना चाहिए, उतने ही लोग ये भी कह रहे थे हमको यूरोपीय संघ के साथ नहीं होना चाहिए। तो दोनों पक्षों ने लोगों के बीच में जाकर अपनी बात को रखा, दोनों ने मोबिलाइज करने की कोशिश की।
लेकिन अंतर आशुतोष अंतर बहुत कम है, 52% और 48%, मतलब बहुत ही कम अंतर है, 1.25 लाख वोटों, मतलब काफी कम अंतर है।
देखिए मैं ये मानता हूँ कि अगर लोकतंत्र के अंदर हमने एक तरीका चुना है तो उस तरीके से रिजल्ट कुछ भी आए, चाहे कितना भी फर्क और बारीक अंतर हो, हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। हमको कोई एक ना एक तो मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा लोगों की राय को जानने के लिए,
भले ही वो एक वोट क्यों ना हो।
आप 125 करोड़ की जनता।
चलिए मैं थोड़ा और विस्तार दे देता हूँ। एक जटिल मुद्दा जिस पर कि भारत की राजनीति में वर्षों बहस चली कि भारत में राष्ट्रपति प्रणाली होनी चाहिए या किस सिस्टम को हम फॉलो करना चाहते हैं, क्या इसका फैसला भी हम जनमत संग्रह से कर सकते हैं?
नहीं, मुझे अगर लगता है कि अगर देश के अंदर ये राय बन जाए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये ठीक से काम नहीं कर रही है और हमको वाकई इसमें बदलाव करने की जरूरत है तो इस बारे में क्यों नहीं सोचा जाना चाहिए। लेकिन पहले ये तो तय हो। मेरा मानना है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के अंदर अपनी तमाम खामियों के बावजूद बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और उसमें तमाम वो चीजें हैं जिसको ठीक किया जा सकता है। अभी वैसे हालात नहीं पैदा हुए हमको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में सोचना चाहिए। एक राय हो सकती है,
मेरा
कहना है, लेकिन अगर ऐसे मान लीजिए अगर ऐसे कभी हालात बनते हैं जहाँ इस बारे में सोचने की जरूरत है, लोगों की राय लेने की जरूरत है, तो बिल्कुल राय लेनी चाहिए।
जी ओम थानवी साहब कुछ कह रहे हैं।
मोहनलाल जी आपने बड़ा मौके पे ये सवाल उछाला है, आज इमरजेंसी की बरसी है,
आज की दरमियानी रात पर इमरजेंसी आई
और इमरजेंसी की बरसी पे इस बात को इसलिए याद करना मैं मानता हूँ कि मौजूद हैं क्योंकि उस वक्त ये सवाल इंदिरा गांधी के जो चापलूस लोग थे उन्होंने, चूंकि सर्वसत्तावाद में अध्यक्षीय प्रणाली जो है उसकी भी अपनी एक भूमिका मानी जाती है, तो उस वक्त ये बात कही गई थी इंदिरा इज इंडिया और उस वक्त कहा गया कि जो है अध्यक्षीय प्रणाली इस देश में लागू हो जाए। हमारे देश में लोकतंत्र की जो प्रणाली है उस प्रणाली को, और वो दुनिया के कई देशों में है, उसमें झगड़ा है ही नहीं। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं वो आम चुनाव से अलग है जनमत संग्रह की। मेरा कहना ये है, और आशुतोष जी भी शायद कह रहे थे कि उसका कुछ ना कुछ मैकेनिज्म आप क्या हो सकता है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये जो मैकेनिज्म है लोकतंत्र का कि एक मत जो है अधिक भी है, ये ऐसे नाजुक मामलों में, मंदिर का मामला, पाकिस्तान का मामला, ये इस तरह की चीज़ों में अगर आप करेंगे, और इसमें मैं बार बार कहता हूँ कि वक्त और भावावेश जो है वो काम करता है, तो एक मत से करके और फिर आप बाकी तमाम देश के जो 49% लोग होंगे उन लोगों का तिरस्कार करेंगे। ऐसे मुद्दे कम से कम जनमत संग्रह से नहीं, वो चुनाव में सामने आते हैं और मोटे तौर पर लोग जो है वो उन सरकारों को मत देते हैं।
एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ जी, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं।
मैं प्रदीप कुमार कुशवाहा जिला जालौन से बोल रहा हूँ।
हाँ प्रदीप भाई, अपनी बात कहें आप।
कहना है कि जो केजरीवाल जी हैं जो रेफरेंडम करा रहे हैं वो सही नहीं है हमारे हिसाब से।
क्यों नहीं सही है? आशुतोष जी सुन रहे हैं आपको।
ये कि जो ये जम्मू कश्मीर है अपना देश, वो भी वो लोग भी करा सकते हैं ना। जिसने का मणिपुर है वो लोग भी करा सकते हैं, तो इसमें कुछ समस्या नहीं आ सकती।
जी जी, मैं बात समझ गया आशुतोष जी। आशुतोष जी, ये जो हमारे प्रदीप भाई थे, प्रदीप भाई कह रहे हैं कि ये ऐसा तो ऐसे अगर होने लगा तो हर कोई जनमत संग्रह करवाने के लिए निकल पड़ेगा।
नहीं नहीं, देखिए वो संभव नहीं। मैंने कहा दुर्लभतम मामलों में जहाँ वाकई में समाज एक चौराहे पे आके खड़ा हो जाए, राजनीति एक चौराहे पे आके खड़ी हो जाए और जहाँ कोई रास्ता न सूझे, वहाँ निश्चित तौर पर जनता के बीच में जाने में कोई बुराई नहीं मानता।
वैसे भी आपकी जो सरकार है वो तो बार बार जनता के बीच में जाती है और राय लेती ही है, तो इस राय में और इसमें क्या फर्क है?
देखिए, मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में बात करती, जहाँ वो ये कहती है कि पॉलिसी मेकिंग में बड़े बड़े फैसलों में जनता की राय लेनी चाहिए। इसलिए हमें इस बार जब हमारा बजट हमने बनाने का काम किया तो हम लोगों के बीच में गए।
लेकिन एक सवाल, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, क्या जनता की राय को आप शामिल करते हैं अपने फैसलों में? बहुत संक्षेप में।
मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आप जो हमारा मोहल्ला सभा का जो कॉन्सेप्ट है और जनता का बजट, हाँ। दोनों में हमने जनता की राय को शामिल किया। मैं आपको बता दूं कि पटपड़गंज के अंदर जब हम लोग कर रहे थे तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि यहाँ लाइब्रेरी बननी चाहिए और सबसे ज्यादा वोट अगर पड़े तो लाइब्रेरी के पक्ष में बने।
जी, ओम थानवी साहब कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल जी, ओम थानवी साहब कुछ कह रहे हैं।
नहीं, मैं तो कहता हूँ कि पूर्ण राजित्व की जो बात है उसके लिए इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है जनमत संग्रह की, क्योंकि सरकार ने, जनता ने एक तरह से अपना मत दे दिया है और तमाम पार्टियां इसके लिए सहमत हैं। ये तो सिर्फ केंद्र सरकार को फैसला करने की ज़रूरत है। अगर इसके लिए
मतलब
भी
केंद्र सरकार को आप मना लें आशुतोष जी, तो आपकी बात वैसे ही मन जाएगी।
ये तो इतना बड़ा सवाल है जिससे हम खुद जूझ रहे हैं कि भाई आखिर हमारी खता क्या है, हमने क्या गलती की, केंद्र सरकार हमको रोज पनिश करने की कोशिश करती है। मैं चाहूंगा कि आप अगर इसमें कोई भूमिका निभा सके तो बहुत अच्छा है।
नहीं, हम तो देखिए पत्रकार हैं, हम तो सिर्फ आपकी बातें और जनता की बातें एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। आशुतोष, कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, बड़े धैर्य से आप अपनी बातें कहते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम दानवी साहब, आखिरी टिप्पणी, 30 सेकंड है मेरे पास। कुल मिलाकर मतलब जटिल मुद्दों के लिए ये जनतंत्र जो हम बात कर रहे हैं पेचीदा सवाल है।
निश्चित पेचीदा सवाल है, और इसमें उस तरह की भावना जो रेसियल कहना चाहिए, नस्लवादी या घृणा की या इस तरह की चीज़ें जो हम लोग अभी ब्रिटेन के इस मामले में देख रहे हैं,
सापेक्षता की बात ज़्यादा है,
इससे बचना चाहिए। और इस तरह के मुद्दे चूँकि अब अगर आप बढ़ जाएंगे तो आप कश्मीर तक चले जाएंगे, भारत पाकिस्तान के युद्ध तक चले जाएंगे। कुछ चीज़ों के मामले में जनमत संग्रह जो है वो बहुत पेचीदा मामला है, और उनसे थोड़ा बचा जाए तो ही अच्छा।
ओम थानवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उन तमाम श्रोताओं का शुक्रिया जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, उनसे माफ़ी जो इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाए। इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मुख्य समाचार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। यूरोपीय संघ के 6 संस्थापक सदस्य ब्रिटेन पर संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जर्मी कॉर्बिन का कहना है कि अगर नेतृत्व के लिए चुनाव होते हैं तो वो दोबारा चुनाव में खड़े होंगे। ब्रिटेन में यूरोपीय कमिश्नर जोनाथन हिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन का कहना है कि अब दूसरा स्वतंत्र जनमत संग्रह करवाने के लिए एक विधेयक लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सीरिया के शहर एलेप्पो से आ रही खबरों के मुताबिक विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में रूस के लड़ाकू विमानों ने हवाई हमले किए हैं। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए चरमपंथी हमले में सीआरपीएफ के 8 जवानों की मौत हो गई है और 28 अन्य घायल हैं। बीबीसी समाचार।
तो आज के बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम यानी कि 9:30 बजे घटना चक्र कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।